नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। मिजोरम में 7 नवंबर, मध्य प्रदेश में 17, राजस्थान में 23 और तेलंगाना में 30 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। सभी राज्यों की मतगणना 3 दिसंबर को होगी। भारत और तंजानिया के बीच संबंधों का रणनीतिक साझेदारी तक विस्तार। अगले 5 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की रूपरेखा बनाने पर सहमति। अमेरिका की क्लाउडिया गोल्डन को महिला श्रम बाजार के परिणामों की समझ को बढ़ाने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। इसराइल ने फिलिस्तीन के साथ संघर्ष के बीच गाजा पट्टी की पूरी घेराबंदी का आदेश दिया। इसराइल में हमले में कई देशों के नागरिक मारे गए और बंधक बनाए गए। और हैदराबाद में क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड ने नीदरलैंड्स को 323 रन का लक्ष्य दिया। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव 7 से 30 नवंबर के बीच होंगे। सभी 5 राज्यों के लिए मतगणना 3 दिसंबर को होगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। एक रिपोर्ट।
मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना इस महीने की 13 तारीख को जारी की जाएगी और 7 नवंबर को एक ही चरण में मतदान कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण के लिए अधिसूचना इस महीने की 13 तारीख को और दूसरे चरण के लिए 21 तारीख को जारी होगी। पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होगा। मध्य प्रदेश में अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी होगी और 17 नवंबर को मतदान होगा। राजस्थान में अधिसूचना 30 अक्टूबर को जारी की जाएगी और मतदान 23 नवंबर को होगा। तेलंगाना में चुनाव की अधिसूचना 3 नवंबर को जारी होगी और राज्य में लोग 30 नवंबर को मतदान करेंगे। 5 राज्यों में कुल 679 विधानसभा सीट हैं और 16 करोड़ मतदाता हैं। इन चुनाव में लगभग 60 लाख से अधिक मतदाता पहली बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यह 2024 के आम चुनाव से पहले होने वाले अंतिम विधानसभा चुनाव होंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि निर्वाचन आयोग इन 5 राज्यों में साफ सुथरे और गड़बड़ियों से मुक्त चुनाव सुनिश्चित करेगा। उन्होंने बताया कि राजनीतिक पार्टियों की जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक प्रोफॉर्मा भी जारी किया जा चुका है।
कमीशन ने एक परफॉर्मा इशू किया था। ये परफॉर्मा बेसिकली ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपने मैनिफेस्टो में क्या करेंगे ये बताने का अधिकार है, लेकिन साथ ही साथ वोटर को ये जानने का अधिकार है कि ये कब करेंगे, कितना करेंगे और कैसे करेंगे।
इन राज्यों में 17,734 आदर्श मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। 8,000 से अधिक मतदान केंद्रों का कामकाज केवल महिलाएं करेंगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
भाजपा ने मध्य प्रदेश में 57, राजस्थान में 41 और छत्तीसगढ़ में 64 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा क्षेत्र से और राज्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया से उम्मीदवार होंगे। राजस्थान में 7 सांसदों को टिकट दिया गया है। एक रिपोर्ट।
अलवर के सांसद बालकनाथ को तिजारा से, अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी को किशनगढ़, झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार को मंडावा, राजसंबंध सांसद दिया कुमारी को विद्याधर नगर, जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को झोटवाड़ा, जालौर सिरोही सांसद देवजी पटेल को साचौर से मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा सवाईमाधोपुर से भाजपा के प्रत्याशी होंगे। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी चंद्रमोहन मीणा को बस्सी से टिकट दिया गया है। आने वाली सूचियों में पार्टी कुछ और बड़े चेहरों को प्रत्याशी बना सकती है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह राजनांदगांव से और केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह भरतपुर सोनहत से उम्मीदवार होंगी। भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जाति जनगणना का समर्थन करने के बयान की आलोचना की है। पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर राजनीतिक लाभ के लिए समाज को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस दशकों तक सत्ता में थी तो उसने जाति जनगणना क्यों नहीं कराई। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस कार्य समिति ने राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना के विचार का समर्थन समर्थन करने का निर्णय किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूह खान हसन ने आज नई दिल्ली में व्यापक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता की। खेल, समुद्री उद्योग, सांस्कृतिक आदान प्रदान, तंजानिया में औद्योगिक पार्क की स्थापना, डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग और व्यापारिक जहाजों की गतिविधियों की पूर्व सूचना साझा करने के क्षेत्र में 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने संबंधों का रणनीतिक साझेदारी तक विस्तार किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन भारत तंजानिया संबंधों के लिए ऐतिहासिक है।
आज का दिन भारत और तंजानिया के संबंधों में एक ऐतिहासिक दिन है। आज हम अपनी सदियों पुरानी मित्रता को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांध रहे हैं। आज हमने कई वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। हिंद महासागर से जुड़े हुए देशों के रूप में हमने मैरिटाइम सिक्योरिटी, पायरेसी, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए आपसी समन्वय बढ़ाने पर बल दिया। इंडो पैसिफिक में सभी प्रयासों में हम तंजानिया को एक बहुमूल्य पार्टनर के रूप में देखते हैं।
श्री मोदी ने कहा कि भारत और तंजानिया रक्षा क्षेत्र में सहयोग की 5 वर्ष की रूपरेखा बनाने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है।
भारत और तंजानिया एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर सुरक्षा खतरा है। इस संबंध में हमने काउंटर टेररिज्म के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर तंजानिया की राष्ट्रपति 4 दिन के राजकीय दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंची थी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत एक मॉडल निवेश गंतव्य बन गया है। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र द्वारा की गई विभिन्न पहलों, विशेषकर सागरमाला परियोजना के कारण पिछले दशक में भारतीय बंदरगाहों की दक्षता और माल लदान क्षमता कई गुना बढ़ गई है। आगामी ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट के 3रे संस्करण के बारे में श्री सोनोवाल ने कहा कि इस सम्मेलन में 40 से अधिक देश भाग लेंगे। इसमें करीब 300 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, जिससे करीब 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश और 15 लाख रोजगार सृजन होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में आज श्री अमित शाह ने कहा कि उनके मंत्रालय ने देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए कई पहल की हैं। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। सिक्किम में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में राज्य की स्थिति के बारे में आज एक समीक्षा बैठक की। राज्य के मुख्य सचिव ने बताया कि अधिकांश क्षेत्रों में सड़क संपर्क बहाल हो गया है। आज 80 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। मुख्य सचिव ने बताया कि 28 राहत शिविर में 6,800 से अधिक लोगों ने शरण ली है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि 11 से 13 अक्टूबर तक मौसम अनुकूल रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के महानिदेशक ने बताया कि बचाव और राहत कार्यों के लिए राज्य में 6 टीमें तैनात की गई हैं। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा कि स्थिति की समीक्षा के लिए अंतर मंत्रालयी समन्वय दल सिक्किम पहुंच गया है। कैबिनेट सचिव ने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उधर सिक्किम के मुख्यमंत्री PS तमांग ने आज सिरवानी के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। बाढ़ में सिरवानी पुल बह गया, जो राज्य का एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग था। श्री तमांग ने पुल के पुनर्निर्माण का काम तेज करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को यातायात बहाली में भी तेजी लाने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वर्ष 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डन को प्रदान किया जाएगा। उनको ये पुरस्कार महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए दिया जाएगा। अब तक सिर्फ दो महिलाओं एलिनोर ऑस्ट्रोम और एस्थर डफलो को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसराइल ने गाजा की पूरी घेराबंदी का आदेश दिया है। इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि नए उपायों में बिजली काटने और भोजन तथा ईंधन लेने पर प्रतिबंध शामिल होगा। इसराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1300 से ऊपर हो गई है, जबकि गाजा पट्टी में 1,23,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। इसराइल में अमरीका के 9 नागरिक और ब्रिटेन के 10 से अधिक नागरिकों के मारे जाने या लापता होने की आशंका है। वहीं नेपाल के भी 10 नागरिक मारे गए हैं और 4 घायल हुए हैं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष से भारत के लिए ऊर्जा का संकट पैदा नहीं होगा। नई दिल्ली में आज श्री पुरी ने कहा कि सरकार घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रही है।
In so far as energy is concerned, let us be absolutely clear that the place where the action is taking place is the, in many respects, the center of the global energy industry. Okay. So we'll watch very carefully.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 4 दिन की इटली और फ्रांस की यात्रा पर आज रवाना हुए। रक्षा मंत्री रोम में इटली के रक्षा मंत्री से मिलेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में रक्षा मंत्री पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति सेबेस्टियन लेकॉर्नू के साथ 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु मेट्रो की पर्पल लाइन के 2 प्रमुख खंडों पर सेवाएं शुरू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बेंगलुरु के निवासियों के जीवन को सुगम बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। आयुष्मान भव अभियान के अंतर्गत 1 महीने से भी कम समय में 3 लाख से अधिक रक्त यूनिट एकत्रित की जा चुके हैं। ये अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के दौरान चलाया गया था। स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि पहले वार्षिक तौर पर केवल 9 लाख रक्त यूनिट एकत्र की जाती थी। मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने आज चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट में मत्स्य पालन और पशुपालन में चल रही परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मत्स्य पालन बुनियादी ढांचा विकास योजना और नीली अर्थव्यवस्था परियोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की। हैदराबाद में क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड ने नीदरलैंड्स को 323 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में नीदरलैंड्स ने ताजा समाचार मिलने तक 38 ओवर में 7 विकेट पर 186 रन बना लिए थे। न्यूजीलैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 322 रन बनाए हैं। कल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में इंग्लैंड का सामना बांग्लादेश से होगा। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज का विषय रहेगा डेंगू बुखार, कारण, लक्षण और निवारक उपाय। इसमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मेडिसिन विभाग के डॉ पीयूष रंजन भाग लेंगे। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। श्रोता अपने सवाल फोन नंबर 011-23-71-7106 और 233-14444 पर पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9289-09-4044 पर भी अपने सवाल भेजे जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। मिजोरम में 7 नवंबर, मध्य प्रदेश में 17, राजस्थान में 23 और तेलंगाना में 30 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। सभी राज्यों की मतगणना 3 दिसंबर को होगी। भारत और तंजानिया के बीच संबंधों का रणनीतिक साझेदारी तक विस्तार। अगले 5 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की रूपरेखा पर सहमति बनी। अमेरिका की क्लाउडिया गोल्डन को महिला श्रम बाजार के परिणामों की समझ को बढ़ाने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। और इसराइल ने फिलिस्तीन के साथ संघर्ष के बीच गाजा पट्टी की पूरी घेराबंदी का आदेश दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।